ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। सच्चाई और सफाई। दुनिया में भी जो ब्राह्मण होते हैं वही स्थूल रूप में बहुत सच सफाई भी रखते हैं और कहते हैं कि हम आपको सच बताएंगे, शास्त्र सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। और बाबा कहते हैं कि सारे विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं उसमें अगर कोई सच्चाई और सफाई पे चल सकता है और चलता है तो बाबा के मुख वंशावली आप और हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मैं आत्मा हूं और सारी दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि हम आत्मा हैं, कैसे आत्मा है। और सफाई क्या है? कि मुझ आत्मा को पांच विकारों से मुक्त होना है। और इसी कार्य में हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति लगे हुए हैं। अब जब बाबा कहते हैं कि बच्चे सच्चाई और सफाई ही आपका लक्ष्य है तो जरूर कुछ मेहनत होती होगी और हमें परखना होगा कि कहीं हम गलती से, भूल से या लापरवाही से झूठ को सच ना मान लें। कारण यह है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये सच की दुनिया है या झूठ की दुनिया है हम सब जानते हैं। बाबा ही कहते हैं कि झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। या फिर कहते हैं आटे में नमक जितना सच रह गया। तो ये झूठ की दुनिया तो है ही, लेकिन इस दुनिया का राजा कौन है? ये किसका राज है? शिव बाबा का, राम का राज है या रावण का राज है? तो झूठों का सरदार कौन हुआ? रावण। उसके कितने सिर हैं? यानी वो 10 सिर से, जैसे लोग 20 नाखूनों से मेहनत करते हैं तो 10 सिर से दिन रात इसी काम में लगा रहता है कि झूठ का झंडा बुलंद हो और सच का झंडा नीचे हो जाए, कहीं सच का झंडा बुलंद ना हो जाए। उसके जो मंत्री हैं वो भी बड़े पावरफुल हैं। कुंभकर्ण जो खुद भी सोया रहे दूसरे को भी सुला दे, मेघनाद जो गरजे तो सही पर बरसे नहीं, झूठे वायदे करता रहे। फिर उसकी सल्तनत में बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े वकील हैं, तरह तरह के कोर्ट्स हैं। वो सारे दिन और रात क्या काम करने में लगे रहते हैं? उनका एक ही लक्ष्य है कि सच को झूठ बनाओ। कभी भी सच की विजय न होने दो, झूठ को सिद्ध करो। और वो इतनी चतुराई से, इतनी युक्ति से झूठ को पेश करते हैं कि सचमुच वो सच को झूठ बना ही देते हैं और झूठ का बोलबाला कर देते हैं। अब ऐसी दुनिया में बाबा आकर के, जैसे कोई हथेली पर सरसों जमाता है या कोई भट्टी के अंदर बर्फ जमाता है, ये कार्य बाबा करते हैं। और हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं कि तुम सच के मार्ग पर चलो। अब आप देखिए कि सच के मार्ग पर चलने के लिए बाबा हमें स्लोगन देते हैं, क्या? सच्चे दिल पर, सच्चे दिल पर साहेब राजी, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि सच की नाव, ये तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि सच की नाव डोलती है पर डूबती नहीं। और ये भी कहते हैं सत्यमेव जयते, कि अंत में विजय सत्य की होगी। अच्छा, अब ये सब कुछ जानते हुए समझते हुए बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे चलते चलते चलते, क्योंकि झूठ का राज है तो बाबा के यज्ञ में भी घुसाता है झूठ, अब पिछले संस्कार तो हैं ही, और जैसा व्यक्ति वैसे मित्र, तो उनको हामी भरने वाले झूठ को मित्र भी टकर जाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो कहेंगे हाँ तो ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे झूठ को पहचान नहीं पाते कई बार, और फिर उसका नतीजा क्या होता है। तो बाबा बताते हैं कि दो चार निशानियां हमें अपने पास रखनी चाहिए ताकि हम टेस्ट कर सकें कि जो कुछ सामने आया है वो सत्य है या झूठ है। अब निशानियां क्या हैं? पहली बात कि झूठ की विजय जरूर होती है, लेकिन उसकी विजय अल्पकालिक होती है, क्योंकि अल्टीमेटली सत्य की विजय होनी है, तो झूठ की विजय अल्पकालिक होती है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको अल्पकालिक लाभ दे और सदाकाल का लाभ गवा दे वो झूठ है। मिसाल के तौर पे बाबा कहते हैं कि बच्चे दुनिया के नाम मान शान में मत जाओ, कहीं आपको थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, थोड़ी सी सफलता मिल जाए, वाह वाह आपकी हो जाए, तो गौर करना कि क्या वो नाम मान शान असली है या नकली है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि यहां हम लोगों को सेवा करनी है, संदेशा देना है, नाम मान शान आपको बहुत मिलेगा आपकी दुनिया में, और वो जो मिलेगा वो अल्पकालिक नहीं होगा। और उसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि केवल और केवल, ये हमारी जन्म घुट्टी है, पहला पहला लेसन है, केवल और केवल बाबा की श्रीमत पे चलना है। अगर कुछ कभी भी गलत फहमी से दूसरे की मत पर चले तो फिर अल्पकालिक हो जाएगा। अब आप देखिए, दो चीजें व्यक्ति को मिली हुई हैं जीवन में चलाने के लिए, एक है दिल और दूसरा है दिमाग। बाबा ने कभी नहीं कहा कि बाबा दिमाग वालों का है, विशाल बुद्धि वालों का है, बाबा हमेशा कहता है बाबा दिल वाला है। क्यों कहता है? कि दिमाग फिर भी स्थूल होता है और दिल बहुत सूक्ष्म होता है। तो दिल वाले जो हैं कभी कभी सोचते हैं कि दिमाग वाले हमसे अच्छे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर, आज की दुनिया के अंदर झूठ बोलने के लिए तो दिमाग चाहिए, तो दुनिया जो दिमाग वाले हैं उनको यहां मान मिलता है, शान मिलता है। यहां भी कई बहनें कहती पढ़े लिखे को, पढ़ी लिखी बहन को ज्यादा वैल्यू है, तो ये भी एक प्रकार का माया का चकमा है। कैसे? अगर आप आदि काल के बच्चों को देखें, जिसको बाबा कहता है पहला पुर या फर्स्ट ग्रुप ऑफ ब्रह्मा कुमार्स एंड कुमारीज, जो 1936-37 में बाबा के बच्चे बने, अब देखिए वो किस आधार पे पावरफुल बने, सफल बने, और आज भी वो हम सबको गाइड करते हैं, दिल के आधार पे या दिमाग के आधार पे? उस समय तो ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था, केवल बाबा था, वो कहते हम बाबा के हैं, संपूर्ण समर्पण हो गए। दिमाग वाला समर्पण होगा, थोड़ी देर बाद फिर सोचेगा मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, ठीक हूं, फिर थोड़ा निश्चय आएगा, फिर दूसरी बारी फिर सोचेगा मैं ठीक हूं, वो हमेशा दुविधा में रहेगा। अब आप देखिए कि उस समय की जो बहनें थीं उनकी भाषा कैसी थी, और आज के भाई बहनों जो दूसरा ग्रुप है उसकी भाषा कैसी है, तो देखा जाएगा कि इनकी भाषा बहुत रिफाइंड है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्रभावशाली है। और उस समय तो गुलाबी भाषा थी, अर्थात हिंदी भी बहने एक्यूरेट नहीं बोलती थी। फिर भी क्या हुआ कि भाषा को ना देख करके बाबा ने दिल को देखा, क्योंकि बाबा का ये कहना है कि जो एक बार ये बात वायदा कर ले कि मेरा तो शिव बाबा एक, और नेक्स्ट क्या इसके, मेरा तो शिव बाबा एक और दूसरा न कोई। तो बाबा कहते हैं कि वो बाबा क्योंकि सत्य है, वो सत्य की शक्ति उनके अंदर भरती जाएगी, और जब कोई ऐसा जजमेंट का मौका आएगा तो बाबा सत्य की शक्ति के आधार पर उनके दिमाग को भी टच कर देगा, ये ठीक है ऐसा करो, क्योंकि उस एक बाबा उनका है। तो फिर क्या होगा, बाबा के साथ, एक बाबा के साथ संबंध रखने से उनकी बुद्धि मौके के ऊपर यथार्थ काम करेगी, जजमेंट ठीक देगी, एक्यूरेट देगी, क्योंकि बाबा का कनेक्शन पक्का है, और इसलिए उनका दिमाग भी ठीक वक्त पे ठीक काम कर देगा। और जो कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, कोई शक नहीं, पर दूसरे भी मेरे, कि क्या हर्ज है हम शिव बाबा का भी साथ रखें और दूसरों का भी रखें, तो स्थूल आंखों से डबल फायदा देखते हैं दिमाग वाले। तो फिर क्या होता है, फिर बाबा कहता है कि वो अल्पकालिक और सदाकालिक के फर्क को नहीं पहचान पाते। बाबा कहते हैं जो सिर्फ मेरा तो शिव बाबा है उनको क्या मिलता है, उनको बाबा का साथ मिलता है, बाबा की शक्ति मिलती है, और बाबा का दिल तख्त मिलता है, अति इंद्रिय सुख मिलता है, दुआएं मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं उन दुआओं के आधार पर उनका जीवन आगे बढ़ता है। अब बाबा की दुआओं पे चलने वाले या अपनी बुद्धि से पुरुषार्थ करके चलने वाले, दोनों में से आसान रास्ता किसका है और सफलता किसके साथ होगी? बुद्धि वालों को कभी सफलता हो जाएगी, कभी मुश्किल लगेगा, कभी असफलता भी हो जाएगी, फिर बाबा के साथ जोड़ेंगे फिर सफलता हो जाएगी, वो इस तरह चलेंगे। और जिन्होंने जो मेरा तो एक शिव बाबा है, उनको कोई चिंता की जरूरत ही नहीं, अपना दिमाग लगाना ही नहीं, ना किसी अपने जैसे से राय लेनी। फिर जो अल्पकाल की सफलता मिलती है दिमाग वालों को, बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, कि दूसरे को कन्विंस कर लिया, बाबा कहते हैं वो केवल कुछ चीजों में, कुछ तरह की सेवा में और कुछ लोगों को खुश करते हैं, लेकिन जो बाबा के बनते हैं वो बाबा के द्वारा सबको खुश करते हैं और उनकी सेवा बड़ी डीप होती है। इसलिए ये धोखा जो हम खाते हैं कि चलो किसने देखा है, उनकी बुद्धि का जजमेंट भी देखो, जो बाबा के बन के ही चलते हैं उनकी बुद्धि सो उन्नति के बातें सोचती है। वो क्या सोचती है, जब भी सोचेगी कि ये बात बाबा को पसंद है, ये जो मैं कर रहा हूं ये बाबा इसको ठीक समझते हैं, उनकी बुद्धि ये सोचेगी। और दूसरों की क्या सोचेगी कि बहुत जो कुछ मैं कर रहा हूं इतना भी कौन करता है, बड़ी मुश्किल से कोई करता है, मैं बहुत अच्छा हूं, और जो कुछ मैं गलत भी करता हूं लोगों को भूल जाएगा, है किसको याद रहेगा सतयुग में ये कौन था। तो उनकी बुद्धि में अलबेलेपन का चश्मा लगा हुआ होगा, लापरवाही का, और उसकी बुद्धि में सो उन्नति का चश्मा लगा हुआ होगा। तो इसलिए जजमेंट भी गलत हो जाएगी, तरह तरह की गलती जजमेंट करती है। एक तो ये कई कहते हैं संस्कार भरने हैं ना, अगर यहां सुख के संस्कार भरोगे तभी तो सतयुग में सुख मिलेगा, इसलिए यहां सुख में रहो। अच्छा, बुद्धि की जजमेंट गलत हो गई। यह सोचते हैं ठीक है, सब भूल भाल जाएगा, कौन सतयुग में देखेगा किसने क्या किया था। लेकिन बाबा कहता ये भी जजमेंट गलत है, क्योंकि सतयुग या भविष्य वर्तमान से होता है। अगर वर्तमान में कुछ नहीं है तो सतयुग में भी समझो नहीं है, और अगर वर्तमान में कुछ है तो सतयुग में है। तो ऐसे अल्प काल वालों को क्या होता है, क्योंकि रावण का राज भी अल्प काल है, रावण की सारी खुशियां भी अल्प काल की हैं, और बाबा का सब कुछ सदा काल का है। वो बॉडी कॉन्शियस पर आधारित है, वो सोल कॉन्शियस पर आधारित है। तो बॉडी कॉन्शियस वाले को मान मिलेगा, शान मिलेगा, वो दुनिया के हिसाब से अपने वस्त्र पहनेगा, दुनिया के हिसाब से व्यवहार करेगा, संसारिक लोक लाज और मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखेगा, ईश्वरी मर्यादाओं को समझेगा ये तो गुप्त है, उसका ध्यान नहीं रखेगा, मर्यादाएं तोड़ देगा, समझेगा कि बहुत अच्छा है। किसी के साथ ज्यादा व्यक्तियों से संबंध बना के, केंद्रों से संबंध बना के अपने आप को ऊंचा करेगा, और वो सोचेगा जो चीज गुप्त है वो कौन देखता है। कुछ सेवा भी करेगा तो उसका उसको फल चाहिए, कोई धन भी देगा तो पता लगना चाहिए मैंने कितना धन दिया, मैं कौन हूं, ये मैं उसके अंदर आएगी। लेकिन ये टेम्परेरी खुशी, क्योंकि आधार तो फाउंडेशन तो है नहीं, तो ये टेम्परेरी खुशी जब समाप्त होगी तो फिर उसका पश्चाताप यही शुरू हो जाएगा, 100 गुना पश्चाताप तो शुरू हो जाएगा। अरे मैंने क्या किया, मैंने अल्प काल के लिए सदा काल का गवा दिया, बाप का सच्चा स्नेह तो मुझे मिला ही नहीं, अति इंद्रिय सुख की तो मुझे अनुभूति हुई नहीं, मैं ऊपर ऊपर का सुख ले रहा हूं मान शान का, और दुआएं तो मुझे मिली ही नहीं। तो फिर उसको क्या होगा, दूसरों में और अपने में डिफरेंस नजर आएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति नहीं होगी, और उसके जो थोड़े बहुत साथी हैं वो सुखी होंगे। कारण क्या, सारे नहीं होंगे, कि जो हमारा वायदा है मेरा तो शिव बाबा एक, और जो उसका नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा ना कोई। तो हमने किसी दूसरे को साथी बना लिया, चाहे टेम्परेरी बना लिया, अच्छा भाई थोड़ी देर के लिए इसका सहारा ले लो, लेकिन चाहे वो दूसरा व्यक्ति है, चाहे वो कोई दूसरी वस्तु है, चाहे वो कोई वैभव है, दूसरा तो बीच में आ गया ना, तो फिर दूसरा आने से बाबा का जो कनेक्शन है, जो आशीर्वाद है, वो नहीं मिलेगा। और दैवी परिवार में भी उसकी बुद्धि क्वेश्चन करेगी, ये नहीं सोचेगी कि बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहा है, बाबा आपे ठीक कर देगा, बाबा तो आए ठीक करने हैं, सारी दुनिया को ठीक करता है, मेरे को क्यों नहीं ठीक करेगा, ये नहीं आएगा। वो उसमें करेक्शन बताएगा, अगर ऐसे नहीं ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसे क्यों नहीं करते आदि आदि। तो सारी मशीनरी जो है सबसे पहले उसको आएगा संशय परिवार से, ब्राह्मण परिवार से, कि ऐसे ऐसे लोग यज्ञ में हैं, ये करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो दुनिया वाले भी नहीं करते आदि आदि। फिर वो संशय धीरे धीरे बढ़ के बड़ों में चले जाएगा, फिर अपनी राय देंगे, उसकी राय ना मानी जाए तो रूठ जाएंगे, मतलब जो आप जानते हैं रोज का। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि सत्य, सच्चाई, ब्राह्मणों की सच्चाई बाबा ने बेसिक बता दी, तुम आत्मा हो, लेकिन सच्चाई को फॉलो करने के लिए जैसे सादगी है, आध्यात्मिकता का सादगी से बहुत कनेक्शन है, रहन सहन की सादगी, खान पान की सादगी, और जो हम दुनिया को कहते हैं कि विश्व परिवर्तन हो रहा है, अब यहां सब कुछ बाबा हमको एडवांस बताते हैं, ये सब कुछ तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, ना चाहोगे तो भी चले जाएगा, इसको सफल कर लो, उसमें वो आनाकानी करेंगे, पूरे समर्पित नहीं होंगे, जो बात अपनी बुद्धि के साथ टैली करे उसमें समर्पित हो जाएंगे, जो नहीं करे उसमें नहीं होंगे। तो गॉडली पावर और गॉडली जो ईश्वरीय कार्य है उसको पूरी तरह नहीं समझेंगे, तो नतीजा यही होगा फिर कि एक अलग सा उनका सिस्टम बनेगा और जो अनुभूतियां हैं, जो प्राप्तियां हैं, बोलेंगे कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, आत्मा उड़ के परम धाम चली जाओ तो बुद्धि से जाएंगे, अच्छा मैं आत्मा परम धाम चली गई, लेकिन अनुभव नहीं होगा कि मैं परम धाम गई हूं। और ऐसे काम करेंगे जैसे गंगा राम के लिए कहते ना, गंगा राम नल पर नहीं बैठना, तो बोलेंगे गंगा राम नल पर नहीं बैठना लेकिन बैठे हुए होंगे, ये है। तो वो जिसको बाबा कहते हैं केवल ज्ञानी हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज से हमें सावधान रहना है। अब आप देखिए, कोई एक्टर होता है तो एक्टर के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो वो एक्टिव होता है, ठीक है, कभी एक्टर ढीला ढाला नहीं होगा, बैठेगा भी तो ऐसे नहीं ढीला ढाला दिखे, चलेगा तो भी एक्टिव होगा। दूसरा वो एक्यूरेट होता है, तभी वो एक्टर कहलाता है, कोई उसमें उसकी एक्टिंग में 19-20 भी नहीं होना चाहिए। अब एक्टर गीत गा रहा है बीच में उबासी ले ले या कुछ सुन रहा है तो उसका फोटो ठीक नहीं आएगा। और फिर वो अट्रैक्टिव होता है, सबसे ज्यादा चीज है एक्टर अट्रैक्टिव होता है। अब आप देखिए, दुनिया के एक्टर अट्रैक्टिव होते हैं यानी सुंदर होते हैं, कोई गुण होते हैं उसमें, फिजिकल होते हैं, जब आपके सामने आएगा तो आपको उसका अट्रैक्शन महसूस होगा। लेकिन रूहानी एक्टर जो है, आत्मा जो है, अगर आत्मा एक्टिव है, आत्मा एक्यूरेट है और आत्मा अट्रैक्टिव है तो बहुत दूर से उसका आकर्षण होगा, आत्माओं को होगा। अब इतने सारे बीके कहां से आ गए, सारे वर्ल्ड से, अलग अलग देशों से बीके खींचे चले आ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, किसकी अट्रैक्शन से आ गए? जरूर आत्मिक अट्रैक्टन है ब्रह्मा बाबा की। पहले तो ब्रह्मा बाबा को ही देखो, ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा के हो गए तो हो गए, दुनिया ने उनका इंसल्ट भी किया, जो पहले इतना संसारिक मान था वो भी नहीं रहा, उल्टा फुल्टा भी बोलते रहे, हो गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अगर बिल्कुल सबूत देखना हो तो जितने विदेशी हैं उन सब का आवाहन ब्रह्मा बाबा ने किया था और अव्यक्त होने के बाद सारे विदेशों में सेंटर खुलते जा रहे हैं। किस अट्रैक्शन से? उन्होंने ब्रह्मा बाबा को तो देखा ही नहीं शरीर में, आप में से भी कईयों ने नहीं देखा होगा, आप में से कितने भाई बहन है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा? जरा हाथ उठाइए, अब देखो। तो आप कैसे ब्रह्मा बाबा के बच्चे बन गए, आपने तो उसको देखा भी नहीं। तो अट्रैक्शन है ना, तो वो जो कशिश है शिव बाबा में कितनी कशिश है, तो वो कशिश हर एक ब्राह्मण में होनी चाहिए। वो तब होगी जितना समर्पण उतना दर्पण है, अर्पण समर्पण संपूर्ण समर्पण, कि क्या हम अपनी बुद्धि से भी सरेंडर हैं या कभी कभी बुद्धि चला लेते हैं, ये क्या हो रहा है, बाबा ने तो कहा था विनाश हो जाएगा, हुआ ही नहीं है, अब हम अब फिर बाबा कह रहा है विनाश हो जाएगा, पता नहीं हो या ना हो, है अपनी तैयारी रखो, बचा के रखो, कुछ ना हुआ तो मेरा क्या होगा, अब बताओ। इसलिए बाबा कहता है मैंने किस एम से कहा था वो मैं जानूं, कि अगर आपको बाबा कह दे कि 100 साल बाद विनाश होगा, आज कह दे तो आप क्या होगा, ढीले ढाले हो जाएंगे कि लास्ट 5 साल में मुरलियां सुन लेंगे, अभी तो मौज कर लो, जिसको मौज समझते हैं। तो बाबा कहता है मैंने फिर अब ये कहना शुरू कर दिया कि चलो श्वास पर तुम्हारे भरोसा है, तुम पूछते हो संगम कितने साल चलेगा, मैं तब तक अपना प्लान बनाऊं, अपने पर भरोसा है तो ये समझो जब तक तुम इस बॉडी में हो तुम्हारे लिए संगम है। तो विनाश को रूप उन्होंने समझा नहीं कि मुझे डेट मिल रही है, मैं अपना सब कुछ सफल कर लूं जो मेरा वेस्ट जाना है, अपने संस्कारों को जल्दी बदल लूं ताकि दूसरों के संस्कार बदलने में मदद करूं। अगर मैं ही लास्ट दिन में तैयार हूंगा तो फिर मैं दूसरों की क्या सेवा करूंगा, आदि आदि। हम सब ये जानते हैं, रोज मुरलियों में बाबा हमको स्पष्ट करते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ कि एक तरफ अल्पकालिक की प्राप्ति और सदाकाल की समाप्ति, और दूसरी तरफ सदाकाल की प्राप्ति और अल्पकाल का त्याग। तो इसमें ब्राह्मणों को देखना है कि मैंने आज की दुनिया में नामी ग्रामी बनना है, आज की दुनिया में मान शान पाना है, आज या मुझे बाबा के साथ लेकर के दिल वाले के बनना है, उसके दिल तख्त पर बैठना है। हम ये ना देखें कि ये खुश हो जाएगा, ये मेरी सेवा अच्छी हो जाएगी, मेरे जोन में मेरा नाम हो जाएगा, मेरे वर्ग में मेरा नाम हो जाएगा, या मैं टिप टॉप रहूं ऊपर से। नहीं, बाबा किस में खुश है? तो बाबा कहता है वो दिल वालों का मैं ध्यान रखूंगा। जब बाबा ने कहा हुआ है कि लास्ट दिन, लास्ट समय में जब दुनिया में लोगों को भोजन भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मैं तुमको दाल रोटी खिलाऊंगा, बाबा ने कहा हुआ है ना। अब देखो ये लोग तो खाने भी लग गए। अच्छा भैया, ये तो ज्ञान है। बाबा कहता है अब कौन इस पे विश्वास करेगा? जो दिलवाला होगा, जो बाबा के दिल तख्त पर होगा, या जो दिमाग चलाएगा? दिमाग चलाएगा, चलो बाबा भी दे देगा पर मैं भी थोड़ी दाल रोटी की तैयारी रखूं, अगर बाबा ने ना दी तो मैं अपनी खा लूंगा। समझा? ये होते दिमाग वाले। इसलिए निश्चय, मैंने निश्चय, अगर मैंने परमात्मा पे भी निश्चय रखा पर अपना भी सारा प्रबंध रखा है तो मेरा निश्चय हुआ। कई लोग ऐसे करते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू, कि शिव बाबा भी मेरा बाकी भी मेरे, वो काम आ गया वो ठीक है, वो काम आ गया वो ठीक है, तो इसको निश्चय कहेंगे? इसलिए बाबा कहता है जो सरेंडर होते हैं, कई हैं वो कहते हैं भी ज्ञान लेना है ना, ठीक है अपने घर में रहो, सब संसार में रहो, संसार की भी मौज करो, ज्ञान भी लेते रहो, इसमें क्या हर्ज है? बाबा फिर बाबा का ज्ञान सुनाएंगे, बाबा ने कहा है ना ट्रस्टी होके रहो, बाबा ने कहा है ना ट्रस्टी भी पूरा ट्रस्टी रहे तो पूरे नंबर ले सकता है, ठीक है बाबा ने कहा है। अब ट्रस्टी होके रहना कितना कठिन है कि आपकी कोई चीज आपकी नहीं रही जब आप ट्रस्टी हो गए, आपका बोल भी आपका नहीं रहा, आपकी वस्तुएं आपकी नहीं रही, आपका बेटा आपका नहीं रहा, आपकी मोटर आपकी नहीं रही, आपका टेलीफोन आपका नहीं रहा, आप ट्रस्टी हैं तो ऐसा करके चलते हैं ट्रस्टी? नहीं, बच्चे को स्वेटर लेने लेके देना होगा तो ये थोड़ी सोचेंगे ये बाबा का बच्चा है, इसको बाबा कैसा स्वेटर लेके। नहीं, मैं चीफ इंजीनियर हूं, मैं अपने बच्चे को अच्छा ही स्वेटर लेके दूं ना, तो वो आ गया तो ट्रस्टी हुए। तो इसलिए ट्रस्टी होना तो तलवार की धार पे चलना है, तो उससे ट्रस्टी होके दिखाएं तो बाबा के तो और भी ज्यादा नंबर हैं, लेकिन पहले तो अपना शरीर ही ले लो। बाबा कहते हैं टेस्ट करो सुबह से शाम तक कि आपके शरीर में आप कितना मेरा शरीर समझते हैं, कितना बाबा को दिया हुआ समझते हैं। जरा सा शरीर को कुछ हो जाए तो क्या कहेंगे? भाई बाबा, ज्ञान बाबा का ही लगाएंगे। बाबा कहता है संगम का शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, इसको बचा के रखना है, इसका ध्यान रखना है, पहले शरीर फिर मुरली सुनने जाऊंगा। अब बताओ, तो वैसे उस शरीर का क्या करते रहे, कितना समय उसका क्या फायदा लिया, बीमार हो गए, मरने का खतरा हो गया, अरे बाबा मेरा शरीर बचाओ, ये तो संगम युग का शरीर है। तो बाबा कहते जितनी देर चलाया उस देर संगम में तुमने क्या कर लिया। इसलिए ये बहुत गहरी बात है, तो गहरी बात सबको पता भी है, लेकिन अल्पकालिक और सदाकालिक। तो हमको क्या देखना है कि हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में सत्यता और सफाई है। इसके लिए जानकी दादी जी ने 5 पॉइंट बताए हुए हैं, और बड़े आसान पॉइंट हैं, पर उसमें हमें अपना आईना दिख जाता है। तो उन्होंने कहा हुआ पहली बात है पवित्रता। पवित्रता, आप पवित्रता की परिभाषा बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं कि पवित्रता भी कितनी डीप परिभाषा है, जिसमें व्यर्थ भी अपवित्रता है, अस्वच्छता है। आप देखिए सतयुग में जो सोचा वह हो जाएगा, या जो होना होगा वही सोचेंगे, संकल्प सिद्धि है, बीच में कोई मार्जिन नहीं है होगा या नहीं होगा। और कलयुग में अच्छा सोच भी लो तो दिल नहीं मानेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अपने लिए भी अगर मरने की, शरीर छोड़ने की नौबत आ जाए तो क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे अच्छा ही होगा, चलो छूट भी गया तो अगला जन्म बाबा अच्छा ही ना, क्या सोचेंगे पता नहीं, ये करूं या वो करूं, तो मतलब मार्जिन है ना व्यर्थ का। तो इसलिए यहां व्यर्थ माने अस्वच्छता। तो सतयुग में अस्वच्छता बीच में होती ही नहीं, मिलावट होती ही नहीं, कमजोर करने की चीज होती नहीं संशय की। इसलिए जो सोचा वो हो गया। आजकल भी बहुत सारे बीके भाई बहन कहते हैं क्या मेरे संकल्प में इतनी ताकत आ गई है, अरे मैंने ये सोचा था पहले ही हो गया, मैंने आपको याद किया था आप आ गए, तो ये क्यों हो रहा है कि व्यर्थ समाप्त हो रहा है। तो अब देखिए स्वच्छता मैंने व्यर्थ, तो पवित्रता का क्या मतलब हुआ कि व्यर्थ बिल्कुल खत्म। और व्यर्थ खत्म करने के बाबा ने अनेक तरीके बताए हुए हैं, बिजी रहो आदि आदि। फिर दूसरी है सत्यता। आप सत्यता पर चल नहीं सकते अगर आप पवित्रता को धारण नहीं करते। जितना पवित्रता को धारण करते हैं उतना सत्यता पे चलते हैं। कई ब्राह्मण सोचते हैं अरे हमने तो पहले पहले बहुत गलतियां की हैं, अब उसको वही याद आता रहता है। अब बाबा कहता है कि जब आप गलतियों को खत्म कर लेते हो तो दुनिया वाले गलतियों को याद नहीं करते, वो देखते हैं ठीक हो गया, अच्छी बात को लोग याद करते हैं। लेकिन इसी व्यर्थ में चले जाते हैं, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, अब नया साल आएगा ना तो क्या करेंगे, सारे दुनिया वाले नए साल में रेजोल्यूशन पास करते हैं अपने लिए, जो जिसका होता मैं ये नहीं करूंगा, कितने दिन चलता है वो, फिर अगले साल उसको दोबारा करना पड़ता है ना। एक आदमी सिगरेट पीता था, उसने कहा सिगरेट छोड़ना इतना आसान है, मैं 12 बार छोड़ चुका हूं, है जी। अब आप देखिए, तो इसलिए वो रेजोल्यूशन पास करेंगे फिर अगले साल याद आएगा, फिर क्या आएगा, अरे पिछले साल भी नहीं हुआ था अब कौन सा होने वाला है। सिर्फ नया कैलेंडर और नई डायरी से नया साल है, और कैलेंडर भी पुरानी दीवार पे टांगते हैं और डायरी भी पुरानी टेबल पे रखते हैं, और कुछ नहीं है, क्योंकि संस्कार कंटिन्यूड है। पर बाबा कहता आपको, हमें तो हर रोज चढ़ती कला को बनाना है। इसलिए सत्यता का मतलब है अगर हमने टेस्ट करना हो, सुबह से शाम तक हम आत्मा अभिमानी होकर कितना चले और देह अभिमानी होकर कितना चले, और ये बढ़ेगी इसकी मात्रा पवित्रता से। इसलिए हमारा स्लोगन है बी होली बी राजयोगी। आगे चलिए, اس کے بعد تھرڈ چیز ہے دھیریتا. دھیریتا مینز پیشنس. ہم نے دیکھنا ہے ہم سنسار میں چلتے ہوئے کتنی دھیریتا رکھتے ہیں. دھیریتا رکھنے والا دوسرے کی بات پوری سنے گا, دھیریتا رکھنے والا کسی کی بات بیچ میں نہیں کاٹے گا, کیونکہ دوسرا کا نرادر کرنا, دوسرے کو انسلٹڈ فیل کرانا, ہرٹ فیل کرانا, تو پھر یہ دکھ دینا ہو جائے گا. اس لیے پتہ بھی ہے کہ اس کی بات پریکٹیکیبل نہیں ہے. آج ہی ہمیں ایک بھائی جی نے ایک لیٹر لکھا اور اس میں بہت اچھی رائے دی ہے کہ بابا کہتے ہیں گلی گلی میں سینٹر ہونا چاہیے, تو انہوں نے پورا پلان بنا کے بھیجا ہے کہ اتنے سارے یگ والے, اتنے ہمارے اتنے بھائی بہن ہیں, اتنے پیسے روز کوئی دے تو 40 سینٹر روز کھل سکتے ہیں اور بہت جلدی گلی گلی میں سینٹر ہو جائیں گے آدھی. تو انہوں نے اپنے بھاو سے, شبھ بھاو سے لکھا. اچھا, ہم نے پہلے پڑھ کے یہ سوچا بھائی سینٹر کھل بھی جائیں تو ٹیچر کہاں سے آئیں گے اتنے 40 سینٹروں کے لیے, نئے ٹیچر پرانے سینٹروں میں تو ہے نہیں. پر اب مان لو وہ ہمارے سامنے آ کے یہ بات پیش کریں اور ہم اس کو کہہ دیں کیا فالتو کا رائے لے آئے ہو تم, ہیں تو اس کو دکھ ہوگا. اس لیے ہمیں بات کو پورا سن کے اس کا آدر رکھتے, کیونکہ اس نے تو شبھ بھاؤ سے کہا ہے کہ سچ مچ بابا نے کہا ہوا ہے گلی گلی میں سینٹر ہونا چاہیے, تو اس کا نرادر نہیں ہوگا. کورٹ میں بھی جو وکیل ہوتے ہیں جو کچھ دوسرا بولتا اس کو کہتے ہیں یس مائی لارڈ بٹ, پہلے ہاں کرتے ہیں پھر بٹ لگاتے ہیں. اسی پرکار سے ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے کہ کسی کا بھی ہمارے من سے نرادر نہ ہو. تو دھیریتا پریکٹیکل میں بھی ہو, آپ کو لگے گا یہ بس جا رہی ہے جلدی جلدی چلو پہنچو پکڑو تو تیز چلے, آپ پیچھے جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی اپنی لاپرواہی ہوگی, میں گھر سے لیٹ چلا ہوں گا, کوئی کارن ہوگا. ہم نے مما کو دیکھا تھا کہ دلی میں مما آئی تھی بہت سال پہلے, تھوڑے سے بھائی بہن ہوتے تھے, تو اولڈ دلی ریلوے اسٹیشن پر مما کو ٹرین میں بدائی دینے کے لیے بھائی بہن آئے, لائن بنائی ہوئی تھی 25-30 ہوں گے. مما آئی تو مما نے ان کو درشٹی دے کے ملنا شروع کیا. مما نے کبھی تیز نہیں چلا, بالکل تیز چلا ہی نہیں, جو نارمل سپیڈ ہے اس پہ چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں کال جیت. اچانک گاڑی نے جھنڈی دے دی اور سیٹی بجا دی, تو جو ان کے ساتھ انہوں نے کہا مما یعنی گاڑی چلنے والی ہے. مما کا ڈبہ ذرا پرے تھا, مما نے سن لیا لیکن ذرا بھی تیزی نہیں کری کہ جلدی جلدی کروں. 5-6 سے ملنے کے بعد دوسری سیٹی بھی بج گئی اور گارڈ ہری جھنڈی دکھانے لگا. پھر اس نے کہا مما, تو مما نے بالکل تیزی نہیں کری اور پورا درشٹی دے کر پوری طرح ٹرین میں بیٹھ گئی تو ٹرین چلی. اس کو کہتے ہیں کال جیت. اگر میں ٹرین کا غلام ہوں کہ ٹرین نہ چل جائے میں اپنا کام چھوڑ دوں. اب آپ اویکت بابا کو دیکھتے ہیں, اویکت بابا کے آگے مان لو لائن سے بھائی بہن درشٹی لیتے ہیں, فرسٹ اور لاسٹ میں بابا نے کبھی ہری کی؟ گائیڈ کہیں گے آگے چلو آگے چلو, لیکن بابا نے کبھی کسی کو کم درشٹی دی یا نہ؟ اسی سنے سے. تو یہ کال جیت ہے. تو ہمیں بھی دھیریتا, پر ہمارے پہلے من میں آنی چاہیے. اگر من میں دھیریتا آئے گی, من میں اتیجت نہیں ہوگا, تو پھر وانی میں بھی آئے گی, پھر کرم میں بھی آئے گی. تو پیشنس یعنی دھیریتا دیوتاؤں کا گن ہے اور اس کا اولنگن آج کل کے لوگوں کا گن ہے یا اوگن ہے. اچھا, پھر دھیریتا کے بعد نمرتا. نمرتا مینز ہیوملٹی, یعنی میں پر نہیں, ابھیمان نہیں. یہ تو ہم سب کو بتایا ہی جاتا ہے کہ سارے ستیوگ کا آدھار کیا ہے, دوسرے کو رسپیکٹ دینا، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا. اور آپ رسپیکٹ تبھی دے سکتے ہیں اگر ہم نمرتا میں ہیں. اور کلیوگ کا دنیا کا آدھار کیا ہے؟ دوسرے کو رسپیکٹ نہیں کرنا، یعنی انہوں نے الگھن کرنا ہی کرنا. اب اسی کو ہنسا کہا جاتا ہے. ہنسا سوکشم میں جو اپوترتا ہے، اینی ٹائپ آف وائلنس اینڈ وائلیشن، کہ کسی بھی پرکار کی مریادا کا الگھن، وہ بھی ہنسا ہے. اب کل یگ کے لوگوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، سونے کے وقت جاگیں گے، جاگے کے وقت سوئیں گے، کسی کا آدر نہیں کریں گے، نہ کسی قانون کا، نہ کسی سینئر کا، نہ کچھ. تو مریادا توڑی ہوئی ہے، قدرت کا بھی الگھن کریں گے تو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہاں مریادا پرشوتم ہے، تو مریادا پرشوتم میں نمرتا، کیونکہ ابھیمانی ویکتی سمجھتا میں بہت پاورفل ہوں. آج کی دنیا میں رسپیکٹ کیسے مانگی جاتی ہے؟ پاورفل کی دوسرے عزت کرتے ہیں، اس لیے خوب پیسہ کماؤ، پیسے والے کی سب عزت کریں گے. اچھی بڑی پوسٹ والے کی سب عزت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے بڑی پوسٹ رکھو، ڈرا کر کے ان سے عزت لو، ٹھیک ہے. اور کتنا میں دوسرے کا نقصان کر سکتا ہوں، یہ پاور بڑھاؤ تاکہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے. اب دیکھیے، یہ بھی رسپیکٹ ہے، کلجو کی رسپیکٹ. تو ابھیمانی ویکتی کیسے دھوکہ کھاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنی ندیاں ہیں، ان کا ایک ہی لکش ہوتا ہے کہ بھاگ بھاگ کے ساگر میں مل جاؤ. یہی ہوتا ہے نا، آپ رستے میں باندھ بناؤ، کچھ کرو، مٹی آ جائے، وہ بھاگ بھاگ کے ساگر میں مل جاتی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے؟ کہ ساگر نیچا ہوتا ہے، اب پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، تو نیچا ہونے سے ساری ندیاں اس میں پانی بھرتی رہتی ہیں. اور اسی پرکار سے جو نمر ویکتی ہوتا ہے، وہ نیچا ہوتا ہے، تو اس کو پراپتی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ایسے ہاتھ کر لیا تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. کیوں؟ کوئی آپ کو گیان دے جائے گا، آپ سنیں گے، کوئی آپ سے رائے دے جائے گا، آپ سنیں گے، کوئی تکلیف بتائے گا. اور جو اونچے ہاتھ والا ہوتا ہے ابھیمانی، وہ تو کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا، وہ تو سنانا ہی چاہتا ہے، اس میں پیشنس تو ہوتی نہیں، تو اس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے. تو خالی کون ہوگا؟ جو اپنے آپ کو اونچا سمجھے گا وہ کبھی بھرے گا ہی نہیں، جو ہے وہ بھی گوائے گا، اور جو نیچا سمجھے گا اس کو سب مل جائے گا. اس لیے ہیوملٹی بہت بڑی شکتی ہے، نمرتا. اور ابھیمان یا تو اپنا اپمان کرواتا ہے یا دوسرے کا. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کئی سلوگن لگے ہوئے ہیں، اف اٹ ہرٹس اٹ از ایگو، کہ آپ کو کشٹ ہوتا ہے یا دوسرے کو، تو ابھیمان ہے. تو ابھیمان کو بابا بھی کہتا ہے، ابھیمان کا ایک ہی کارن ہے، دے بھان میں آئے آپ بڑا چھوٹا، امیر غریب گننے لگ جاؤ گے، ینگ اولڈ. آتما تو بدھی ہے، پوائنٹ ہے. اب آپ کسی ویکتی کو بٹھا کے اس کا فوٹو لو چاروں طرف سے، تو ایک جیسا نہیں آئے گا. کسی میٹنگ میں بھی لوگ 10 لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو. اگر پوائنٹ بن جاؤ تو پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہو جائے گا. بندی کا کہیں سے بھی فوٹو لو، ویسا ہی آئے گا. اس لیے یہ جو ہے، بابا نے ہمیں سکھایا کہ تم باڈی کانشیس چھوڑو. ست یگ میں اور کچھ بھی نہیں ہے، باڈی کانشیس نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اور یہاں سب کچھ ہے پر باڈی کانشیس نہیں چھوڑتے. تو اس لیے نمرتا. اور اس کے بعد ایک اور ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اندر کیا ہیں پریکٹیکلی. کیونکہ ایک ہوتا ہے پارٹ بجانا، وہ دنیا کے لوگ بجاتے ہیں. کسی دکاندار کے پاس جاؤ، آپ کے کہہ کے آئیے بیٹھیے، مسکرائے گا، ہیں آپ کوکا کولا پیو. اور اگر اس کو اس سامان واپس کرنے جاؤ جو اس سے خریدا ہے، پھر دیکھو کیا بولتا ہے. صبح صبح آ گئے، ابھی تو کوئی گاہک بھی نہیں آیا، اچھا اس کے بدلے وہ چیز لے لو تاکہ ڈبل کما لے، تو اس کا روپ دوسرا ہے. کسی جگہ جاؤ، ریسپشنسٹ بیٹھا ہے، مسکرا کے بات کرے گا، تھوڑی دیر بعد آپ کو تنگ کرے گا. اس لیے یہ تو نکلی. لیکن ہماری نیچرل نیچر ہو صدا کے لیے ہو تو اس کے لیے تو بہت ایک تو سمپل ہونا چاہیے، مشکل چیز کبھی بھی صدا کے لیے نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے آپ کی نیچر بن جائے، آپ کو بنانا نہ پڑے۔ تو اس لیے مدھرتا، لاسٹ دادی جی نے بتایا تھا آپ کا ٹیسٹ کیا ہے، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ آپ کی بول سے نکلے گا۔ اگر آپ کو کبھی چڑچڑا پن آتا ہے یا کھینچتے ہیں کسی بھی پرکار سے، آپ کا موڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو سمجھو اندر ابھی کریکشن کی ضرورت ہے۔ اب دیوتا کیا ہے، ان کی مورتیاں بھی، اب مورتیاں بھی بابا کہتا ہے تمہاری ورشپ ہوتی ہے، اور جب جیون میں ہیں تو پوجیہ دیوتا کہلاتے ہی ہیں، اور ہم ہی وہ بننے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ دنیا کے لوگ دھن سادھن چیزیں، بڑی کار، بڑا مکان اکٹھا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے ریسپیکٹیبل سمجھیں گے، عزت دار ویکتی سمجھیں گے۔ اچھا، لیکن غور سے سوچئے، ریسپیکٹڈ نہیں، ریسپیکٹیبل، آنرڈ نہیں، آنریبل۔ اب بابا کیا کہتا ہے، میں تم کو ریسپیکٹڈ اپنے سمان دھاری بناتا ہوں، اس لیے باہر کا تو ہم کو دیکھنا ہی نہیں، اندر آپ دیکھیں گے مایا کیا کرتی، باہر کا شو، اندر خالی۔ اب بابا کیا کرتا ہے، اندر سے بھرتو، اس کا نیچرل شو آپ ہی آ جائے گا۔ اس لیے مدھرتا ہمارا ٹیسٹ ہے، کسی بھی کنڈیشن میں۔ دنیا والے بھی مدھر ہوتے ہیں، جب فائدہ ہو، کسی سے پراپتی ہو، اس سے مسکرا کے بات کریں گے، جس سے کوئی مطلب نہیں ایسے کریں گے۔ ایک دلی میں دھرم نیتا ہے، دلی میں دھرم نیتا ہے، وہ یہاں آتا ہے دھرم ایک پروگرام میں، بڑا اچھا سوبھاؤ کا ہے۔ تو ایک دن جب واپس جا رہا تھا تو میری ہی ٹرین کے ڈبے میں دوسرے کیبن میں بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا یہاں آ کے وہ دادی جانکی کے ساتھ اس نے نرتیہ بھی کیا، بڑا خوش۔ تو میں اس سے ملنے چلا گیا کہ بھائی صاحب خوش ہو کے آئے ہیں، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ خوش ہو کے آئے، کہتے جی خوش تو تھا اب نہیں ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کل تو آپ اتنے خوش تھے۔ کہتا ہے ایسا ہے، میں اسٹیشن پر آیا، آپ کا ایک کیبن بنا ہوا ہے، وہاں میں نے جا کے پوچھا کہ میری ڈبا سیٹ کہاں، وہ کہتے ہیں آپ پہ ڈھونڈ لو۔ اچھا، کہتا ہے میرا سامان پکڑ کے گیا، ڈبے کے پاس گیا تو ڈبے میں آپ کے دو بھیکے نکل رہے تھے، میں نے ان کو پوچھا تو کہتے ہیں آپ پہ ڈھونڈ لو۔ اچھا، اب کہتا کہ دیکھو، تو جب لینے آئے تھے تو میرا سامان بھی اٹھایا تھا، میرے کو وہ لے کے گئے تھے۔ اب میں کیا کرتا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے اپنی وہ ڈریس نہیں پہنی ہوئی ہوگی، جو پہنتے ہیں نا دھرم نیتا، جس سے پتا لگتا ہے، تو آپ اس ڈریس میں نہیں ہوں گے۔ اب اس کا جواب سنیے، کہتا میں انسان تو تھا۔ اب اس کا کیا جواب دوں میں، کہتا میں انسان تو تھا، انسانیت کے ناطے بھی کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے تو آپ گائیڈ کرتے ہیں، آپ کے بی کے ڈیوٹی والے ایسے کر رہے ہیں، اب ہمیں شرم آتی، پر بابا کہتے ہیں سب پرشارتھی ہیں۔ تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ یہ ہماری، جو بابا کہتا ہے تمہارے چہرہ بولے، تمہارا خوشی بولے، لوگ سوچیں اس حالات میں دنیا والے کیسے گھبرا رہے ہیں، تم انگد کی طرح کھڑے ہو دوسرے کو، یہ تب آئے گا اگر ہم اندر سے، جس کو کہتے ہیں سچے بابا کے سچے سوچھ اور دھارنا والے بچے بنیں گے، کیول بابا کا آدھار لیں گے، بیچ میں دوسرا نہ کوئی ویکتی آنا چاہیے، نہ کوئی وستو آنی چاہیے، نہ کوئی ویبھو آنا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کی داسی ہیں، بابا نے کہہ رکھا ہے سارے سینٹروں کو میں چلاتا ہوں، جتنے سادھن ہیں اس سے زیادہ سب کو دیتا ہوں، اگر کسی کو نہیں ملتا اس کو سوچنا چاہیے، وہ یہی ہوگا کہ اپنے بھروسے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں بابا چلا رہا ہے، تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ اس لیے برہمن کی جیون کا سواس، برہمن کا لکش کیا ہے، سچائی اور صفائی، اور وہ آئے گی میرا تو ایک بابا دوسرا نہ کوئی۔ اوم شانتی۔